ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम और भक्त भागवत इन दोनों से हम लोग कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ग्रंथ भागवत से पहले हम भगवत भावक एक भक्त भागवत की जीवनी हम लोग कुछ देखेंगे और विजयादशमी के विषय में हम लोग श्रीमद् भागवतम के बाद कुछ चर्चा कर लेंगे। यदि भी समय बहुत कम है लेकिन इस पर भी हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि जितने हो सके उतने चर्चा हम लोग या इस विषय को समझ सके। तो एक भागवत बड़े भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्ति रस पात्र। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में, कहते हैं कि महाप्रभु ने दो भागवत दिया, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है, इसे जितने भी भागवत या भक्त भागवत हुए हैं सब उन्हीं के द्वारा प्रदत्त है इस संसार में। तो आज हमारे इन संस्था के एक अद्वितीय आचार्य जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, तो इस संप्रदाय के नाम पर जो हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, तो अनुमाधवाचार्य का आज आविर्भाव तिथि है, इसने उनकी जीवनी से हम लोग पहले कुछ पाठ करके और बाद में श्रीमद् भागवतम के आज के श्लोक में जाते हैं। तो श्रीमाधवाचार्य की जीवनी एक अद्भुत जीवनी है क्योंकि वे साक्षात वायु के अवतार माने जाते हैं। उसके पूर्व भी दो बार भक्त के रूप में वायु ने अवतार ग्रहण किया है ऐसा देखा जाता है। श्री रामचंद्र जी की ख्याति को प्रसिद्ध करने के लिए भगवान हनुमान जी ने अवतार लिया था, वो भी वायुपुत्र है, और उनके पश्चात श्री भीम कुंती जी की कोख से महान भक्त के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और ये तीसरी बार इस कलयुग में जब अद्वैतवाद का बोलबाला हो रहा था तो शंकराचार्य के बाद उन शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद की स्थापना की थी और बौद्ध मत इतना सर पे चढ़ा हुआ था समाज के, तो उस समय इन वायुपुत्र का एक बार फिर से जन्म होता है। उन महान वायु ने अवतार लिया दक्षिण भारत में जो परशुराम जी के द्वारा चार तीर्थ निर्मित है, तो उनके मध्यवर्ती गांव में श्री और नारायण भट्ट के घर में श्री वेदवती माता जिनका नाम था उनके पत्नी का, उनके गर्भ से इनका आविर्भाव हुआ। हम ज्यादा तो उनकी जीवनी में नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी जीवनी बहुत अद्भुत है और विचित्र विचित्र घटनाएं उनमें बताई गई है। उनके लिए ये क्लास होना चाहिए था, लेकिन खैर आज सब इस प्रकार मुझे बताया गया है तो उसी प्रकार हम चलेंगे। तो उनके बचपन से वो स्वाभाविक उनकी खेल कूद में रुचि ज्यादा थी, तो उसी प्रकार वो पाठशाला गए और वहां पर उन पढ़ाई में उनका ज्यादा ध्यान नहीं था, उससे ज्यादा उन खेल कूद में उनका रुचि था। उनका नाम रखा था वासुदेव माता पिता ने, तो वासुदेव का खेलकूद में ज्यादा रुचि देख करके उनके अध्यापक ने उनको फटकारा, उनको डांटा कि तुम अध्ययन में ध्यान नहीं रखते हो और इस प्रकार खेलकूद में तुम्हारा सारा समय बीत रहा है, आखिर अध्ययन कब करोगे। तो बोलते ठीक है, आप जो पढ़ाई हुए पाठ को पूछिए, आपको कोई डाउट है मेरे अध्ययन में तो आप पूछ सकते हैं। तो जब इस प्रकार अध्यापक को बताया गया तो अध्यापक ने कुछ जिज्ञासा की, उनकी जिज्ञासा जो नहीं थी उनके विषय में, जो वेद अध्ययन उन्होंने नहीं कराया था उनके भी विषय में वो सब कुछ ज्ञान बताने लगे। इन अद्भुत उनके विषय में सारी बातें लिखी गई है। तो उस प्रकार वो जब 12 साल के हुए तो 12 साल के बाद में एक दिन एक हाथ में उन छड़ी लेकर के अपने पिताजी के पास जाकर के वो बोले, छड़ी गाड़ते हुए पिताजी के सामने, पिताजी मैं उन अद्वैतवाद का खंडन करूंगा और मैं द्वैतवाद की स्थापना करूंगा। उनके पिताजी हंसकर बोले तुम्हारे हाथ की छड़ी अगर वृक्ष का रूप ले ले तब ये हो सकता है। ये काठ की छड़ी, सूखे काठ की छड़ी वृक्ष का रूप ले ले ये शक्य नहीं। उसी प्रकार बोलते हैं तुम्हारा भी ये जो बचपना है, क्योंकि उनके पिताजी जानते थे, उन शंकराचार्य ने उसी समय बहुत जबरदस्त तरीके से उन मायावाद को स्थापित किया था। उनका खंडन करना दूर रहे, उनके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता है। तो जैसे पिताजी ने कहा था कि छड़ी वृक्ष बन जाए, तो उन्होंने छड़ी को गाड़ा उनके पिताजी के सामने और गाड़ा तत्काल एक बहुत बड़े वट वृक्ष के रूप में वो प्रकटित हो गया। ऐसा कहते आज भी वो वृक्ष है, वो वट वृक्ष आज भी स्थित है वहां पर। रामानुजाचार्य की जो सोटी गाड़ा था उन सोटी से वृक्ष एक वट वृक्ष फूटा और देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। तब उनके पिताजी ने माना कि हो सकता है ये करके दिखाए तो जल्दी उनका विवाह करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये तो सन्यासी हो जाएगा। जब इस प्रकार घटना देख करके माता पिता को चिंता होने लगी, अरे भाई कौन अपने संबंधी को गवाना चाहता है कि नहीं, और उसमें अपना भोग्य वस्तु को कौन गवाना चाहेगा। वो पुत्र तो पिता के भोग्य माने जाते हैं, चूंकि वृद्धावस्था में या पिता का पालन करता है पुत्र तो कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन उन लोग ने कितना भी प्रयास किया, लेकिन ये 12 साल की आयुष्य में वो घर से भाग गए और जाकर के उन्होंने इन दीक्षा शिक्षा को प्राप्त कर लिया। ऐसा कहते संन्यास डायरेक्ट प्राप्त कर लिया, ऐसा लिखा उनके जीवन में। विस्तार से सब बातें उनमें नहीं जाते हुए हम लोग और कुछ जो उनका माधवाचार्य नाम कैसे पड़ा उनके विषय में कुछ बातें करेंगे। वो कहते हैं कि मध्व इति आनंद उद्दिष्ट एवं इति ज्ञानम उच्यते मध्व आनंद तीर्थस्यात् तृतीय मारुति तनु। इस श्लोक में बताया गया है कि देखिए इन माधवाचार्य मधु शब्द से इन शब्द आया है, मधु शब्द के द्वारा आनंद का बोध होता है। और उनके साथ में वॉक के द्वारा ज्ञान कथित होता है, या ज्ञान का विस्तार जो भी हो। और तीर्थ अर्थात उन ज्ञान के, तीर्थ का ही नाम ज्ञान है, एक दूसरा नाम है ज्ञान। तो इस प्रकार मध्व शब्द का अर्थ आनंद तीर्थ हुआ और उसका नाम दीक्षा के बाद आनंद तीर्थ हुआ था। उनको आनंद प्रज्ञ भी बोला जाता है। तो इस प्रकार आज के आज तक उनके संप्रदाय वाले जो है इनका नाम उन मध्वाचार्य के रूप में बताते हैं, कहते हैं उनके अधस्तन शिष्य श्री माधवाचार्य का वो परिचय प्रदान करते हुए वो आज भी उस मंत्र का उच्चारण करते हैं जो माधवाचार्य के विषय में लिखा गया है। वो कहते स्वस्ति श्रीमत परमहंस परिवराज काचार्य वर्जिताढ्य अनेक गुण गणा अलंकृत पट वाक्य न प्रमाण पारावार पारंगत सर्वतंत्र स्वतंत्र श्रीमद वैष्णी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्ण पाद पद्म आराधक श्रीमद दैत वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाय कहते श्रीमद आनंद तीर्था पर नामक श्री माधवाचार्य, ऐसा उनके प्रणाम श्लोक में ये श्लोक है। जैसे हम प्रभुपाद जी के लिए प्रणाम मंत्र गाते हैं तो माधवाचार्य के लिए उनकी परंपरा में इतना लंबा मंत्र है। उस मंत्र का अर्थ तो बहुत सुंदर स्पष्ट है, कहते हैं स्वस्तिक अत्यंत कल्याण, कहते श्रीमद परमहंस परिवराज का जैसे हम लोग लगाते हैं तो कहते गुणगणा अलंकृत पदवाक्य, उन नाना प्रकार के उन अलंकृत पदों का रचना जिनसे होता है या उन प्रमाण का पारावार नहीं है जो माधवाचार्य उन शास्त्र से प्रमाण ही प्रमाण देते हैं। तो कहते पारंगत सर्वतंत्र स्वतंत्र, और वो इसी में अत्यंत पारंगत माने जाते हैं। और कहते श्री श्रीमद वैष्णवी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्ण पादा पाद पद्मा आराधक, और उनके आराधक कौन है तो कहते उन भीष्म नंदिनी सत्यभामा के विग्रह, उनके पाद पद्मों का ये आराधक थे श्री गोपाल जो आज भी उडुपी में स्थापित है। वो कैसे स्थापित हुआ उस घटना में हम जा नहीं सकते, इतना लंबा प्रवचन, फिर भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा कुछ न कुछ। तो श्रीमद वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य, उन वैष्णव सिद्धांत को प्रचिष्ट रूपण जिन्होंने स्थापित किया श्रीमद आनंद तीर्थ पर, जिनका नाम आनंद तीर्थ था, और श्री कैसे श्रीमद माधवाचार्य थी। तो इस प्रकार उनका नाम ये माधवाचार्य उडुपी के उन आठों आठ मठों में, कहते हैं आज तक उन माधवाचार्य के समस्त जो अनुगत जन है वो सब लोग अपने संप्रदाय के उन वैभव गौरव का उच्चारण इस प्रकार करते हुए ये प्रचलित है ये श्लोक, अपने संप्रदाय का गौरव लेते हुए उनका इस प्रकार उनका प्रार्थना स्तुति नति करते हैं उनको। तो कहते 12 वर्ष की आयु में उन संन्यास ग्रहण करके वो अच्युत प्रेक्ष शिक्षण उनका संन्यास हुआ और माधवाचार्य उनका नाम हुआ। और इनके बाद में जो अपने सदाचार के द्वारा उन गुरुदेव को भी विस्मित कर दिया था, बचपन का प्रचार जो बचपन में उन्होंने अपने गुरु अध्यापक को विस्मित कर दिया था, उन्होंने सर्वत्र विष्णु भक्ति के प्रचार के अभियान को आरंभ कर दिया। और जितने भी मायावादी सिद्धांत था उन सबको अनेक अनेक उन शास्त्र तर्कों के द्वारा और अकाट्य सिद्धांत के द्वारा वो काट देते थे बचपन से, वो इतने विज्ञ हुए। और एक दिन की घटना है कि वो जब एक समुद्र तट पर बैठे हुए थे तो निकटतर कुछ बालों में एक नौका फंस गया, एक नाविक उनको बहुत प्रयत्न कर रहा था निकालने का, तो उसमें नाना प्रकार के द्रव्य था जो व्यापार वाणिज्य के लिए नाव लेकर के जाते हैं व्यापारी लोग, इस प्रकार तो उनकी नाव बालू में फंस गई थी। तो इस उन सन्यासी ने उन तट पर बैठे हुए हाथ लंबा करके उन नौका को निकाला, भाई पुत्र है ना भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लंबा जैसे ऐसे धक्का मार रहे हैं और धक्केल रहे नौका को, तो नौका तो एकदम चलना प्रारंभ किया, वहां से निकल गया। वो जब तट पर नौका लगी तो उनके नाविक ने या उनमें बैठे हुए कोई सेठ इत्यादि ने कहा कि आप कुछ कृपा करते, कुछ न आपकी सेवा हो जाए। एक अद्भुत, जब इस सन्यासी ने ही नाव को निकाला, उन्होंने देखा स्पष्ट रूप से इसका हाथ तो स्पर्श नहीं कर रहा है नाव को, लेकिन नाव को धक्का लग रहा है, और इसी के कारण वो नौका वो तट पर लगी थी। बोले कुछ ना कुछ मौका दीजिए सेवा का। बोलते इसमें बहुत सारा द्रव्य है कुछ, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ढेला जो गोपीचंदन का ढेला था, उन ढेलों को उठाया, बोले यही मुझे चाहिए। और वो ढेले को लेकर मार्ग में जाते थे, तो वहीं पर मार्ग में उन गोपी चंदन का जो टुकड़ा था वो टूट गया बीच मार्ग में, और टूट गया और भगवान का सुंदर विग्रह उससे वो प्रकटित हुआ। दधिमंथन और दंड, दधिमंथन का दंड हाथ में था, इस प्रकार का एक विग्रह, तो भगवान की एक शिव मूर्ति प्रकट हो गई जो आज भी वहां पर स्थापित है। मगर इसी में रहेंगे तो भागवत भी नहीं होगा, पाठ लंबा चौड़ा है। तो इस प्रकार एक महान आचार्य के रूप में हमारे ही इन ब्रह्म संप्रदाय के इन महान आचार्य हैं, इसलिए हम सब लोग का उनके प्रति अत्यंत सम्मान और एक गर्व लेने लायक आचार्य है, क्योंकि उनकी जीवनी अति अद्भुत है। आगे और अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, और आदि शंकराचार्य ने दोबारा जन्म लेकर उनको परास्त करने की कोशिश की थी, वो भी हार गए। बहुत सारी घटना पीछे वर्णन है, लेकिन उन वर्णन में हम लोग नहीं जा करके भागवतम में प्रवेश देते हैं। आज के श्लोक में श्रीमद् भागवतम, तो भागवतम में जाते हैं हम लोग, और बाद में अभी विजया दशमी भी आज कुछ है, तो इसके विषय में भी कुछ न कुछ तो कहने के लिए हमको बोला गया है। आइए हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। एक भागवत ये बड़ शास्त्र है, और एक भक्त भागवत का जीवनी पाठ करके अभी ग्रंथ भागवत में हम लोग जाते हैं। तो आज का श्लोक संख्या है 7, 8, 17। तो श्लोक बोर्ड पर लिखा, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। सत्यम विदातम निज वृत्ति भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु आत्मनः व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। शब्दार्थ सत्यम सच विधातुम सिद्ध करने के लिए निज वृत्ति भाषितम अपने दास के शब्दों को व्यापितम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवो तथा पंच महाभूत के मध्य अखिलेशु समस्त जगह च तथा आत्मनः अपना अदृश्य दिखाई पड़े अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खंभे में सभायाम सभा के भीतर न नहीं मृगम पशु न न तो मानुषम मनुष्य। अनुवाद तात्पर्य श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था और न तो सिंह का, और इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकटित हुए। बनरसिंह देव भगवान की जय। भाई भागवतम में आविर्भाव हो रहा है, तात्पर्य जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि कहाँ तुम्हारा भगवान है, क्या वह इस कमरे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर के उत्तर दिया कि हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतएव हिरण्यकश्यपु को विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधे सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकश्यपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट देव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी भी निष्ठ नहीं होता है, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, कौन्ति प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बारंबार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर है। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख दिया कि हिरण्यकश्यपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा, और भगवान ऐसे रूप में प्रकटित हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का और न तो सिंह का ही था। अमज्ञान दस ज्ञानं जनसनक चक्षुर्मीलितं जैन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्य मनोहरिष्टं स्थापितं जैन भूतल सोयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरोर्नवश्नवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनर्दनविदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्गयतगिरिं यत्कृपातमहमन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुन निनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं जयतं सुरतपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाध शिवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पश्चाय भूतले श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता वैराग्य युग भक्ति समे कृपा दुख सनातन प्रभु तमाश्रयामी सनातन प्रभु तमाश्रयामी सनातन प्रभु तमाश्रयामी। हरे कृष्ण। जैसे आप लोग पाठ पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार अपने पुत्र की बात पर अत्यंत क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यपु उनको मारने के लिए छलांग लगा करके अपने सिंहासन से उतरे और उनके हाथ में खड़गता खुला हुआ लेकिन उनसे पहले जैसे प्रहलाद महाराज के साथ वार्तालाप हुआ, इन वार्तालाप के अंतर्गत हम लोग या आप लोग ये जाने कि जब उनके पिता ने पूछा था कि तुम्हारा ये हरि तुमको बचाने वाला आज कैसे बचाते हैं मैं देखता हूं, और वो कहाँ है, बोले सर्वत्र है। तो सर्वत्र है तो क्या एक खंभे में, बोले खंभे में भी है। तो सबसे पहले भक्त को चैलेंज देने से पूर्व भगवान को चैलेंज देने के लिए चला, बोले खंभा में है तो सबसे पहले खंभे को ही मैं तोड़ दूंगा। तो इस प्रकार वो कूद करके खंभे को जोर से मुक्का लगाया। आप जानते हैं उनका भाई भी महान बलवान था, वो गदा मार करके पहाड़ को चूर्ण चूर्ण करता था, ये बहुत बलवान है, इससे बड़े दैत्य कोई नहीं हुए। सबसे बलवान दैत्य दो भाई हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो जब जोर से मुक्का उन्होंने मारा तो मुक्का मारते ही तो बहुत ज्यादा आवाज आई, इतनी ज्यादा आवाज आई खंभा टूटने से ऐसी आवाज नहीं आएगी, यहां तक कि ब्रह्मलोक पर्यंत तो प्रचंड आवाज पहुंचा जब भगवान का प्रागट्य हो रहा था। और ब्रह्मा जी को लगा कि अरे यह समय में प्रलय का समय आ गया क्या, मैं तो जानता हूं अभी देर है प्रलय में, लेकिन पता नहीं प्रलय आ गया क्या। तो इस प्रकार और उस आवाज करने वाला कौन है, पीछे मुड़के उन खंभे को देखा तो देखते तो कहते सविक्रम विक्रम पुत्र वध इप्सुर ओजसा निस्सम निराहलाद अपूर्व अद्भुत। पिछला श्लोक में ये बात बताया, अंत सभायम न ददर्श, उन्होंने देखा अनसभा में पीछे मुड़ करके कि इतना तो आवाज नहीं आना चाहिए, ये अद्भुत आवाज उठी। तो कहते उन आवाज को श्रवण करके वो देखा कि कौन आवाज करते, बोलते तत्पदम न ददर्श सभायाम अंत, उन्होंने सभा में कुछ नहीं देखा आवाज करने वाले व्यक्ति के, ना वितत्र सूर्य न सुरा अरि युथपा। लेकिन उसके एक घटना हुई उन आवाज के कारण, बड़े बड़े युद्ध सेनापति लोग भाग खड़े हुए, और उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन सॉरी नारद मुनि वर्णन करते हैं, नारद मुनि के मुख से हम लोग श्रवण करते हैं। वो वर्णन करते हैं कि सत्यम विदातम निजभृत भाषितम, उसी समय भगवान नरसिंहदेव के रूप में खंभे में प्रकटित हुए। किस लिए प्रकटित हुए उनका कारण बता रहे हैं। भगवान का प्रागट्य का कारण का बहुत चर्चा होता है शास्त्र में, नाना प्रकार के कारणों को दर्शाया जाता है। उसी प्रकार भगवान नरसिंह के उन आविर्भाव का कारण इस श्लोक में बताया गया है। आविर्भूत तो हुए कैसे, न मृगम न मानुषम स्तंभे सभाया, उन सभा के खंड में जो बीच में खंभा था उन खंभे से भगवान प्रकटित हुए थे। लेकिन न मृगम न मानुषम, वो सिंह भी नहीं थे और मनुष्य भी नहीं थे, एक विशिष्ट उद्देश्य से श्री भगवान का यह अवतार हुआ था। इसे ऐसे अद्भुत विचित्र रूप में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया, कहते अदृश्यता अद्भुत रूपम उद्भवन, उन खंभे के बीच से एक अद्भुत रूप प्रकटित हुआ, ये बात बता रहे। लेकिन किस कारण से, तो कहते हैं कहते निज वृत्ति भाषित तुम सत्यम विधातुम, अपने भक्त ने जो कहा था, इन भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान इस खंभे से प्रकटित हुए। श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं भगवद गीता की उन उक्ति अपने कथन में, उन्होंने लिखा है कुंती प्रति जानी न मैं भक्त पुनस्यति, कुंती पुत्र तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। ان کے سو مکھ کی وانی ہے, اپنے مکھ سے مکھ کی وانی ہے, لیکن ارجن کو بول رہے, چونکہ میری پرتیکتا تو ٹوٹتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے, وہ اس لوگ ستیہ نہیں مانیں گے. ارے وہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں اور پھر اٹھ پٹانگ کام بھی کرتے رہتے ہیں, اس سے تم پرتیجیا کرو. چونکہ میرے بھکت کے دوارا باشت یا ان کے دوارا ادگار کبھی اسط نہیں ہوتا ہے. اس کو میں ستیہ کر کے رہوں گا. تو دیکھیے یہاں کہتے نج برت, ان کے اپنے برت کون ہیں, شری پرہلاد, شری برہما, چتش کمار, شری نارد جی, کتنے کتنے لوگوں کو کوٹ کیا ہے آچاریوں نے, یہ سب انہیں برت ہے, ان کے برت ہے. ان سمست داسوں کی بات کو ستیہ کرنے کے لیے شری بھگوان اس پرکار کا ادبھت روپ لے کر کے اس کمبے سے پرکٹت ہوئے. اور ایک کارن بتا دیں, ویاپتیم چ بھوتیشو کھیلیشو آتمنا, اور سمست بھوتوں میں انو اور پرمانو میں اپنی ویاپتی کو دکھانے کے لیے کہ میں سروتر ویاپت ہوں. یہ دو بات سے, یہ دو کارن یہاں بتایا گیا ہے. سروتر بھگوان ویاپت ہے, اس کا وشواس کیسے ہوگا لوگوں کو. وشوناتھ چکرتی ٹھاکر کچھ لوگ کے اپیے شاید کچھ بات لکھے, آئیے ہم لوگ ادھر جاتے ہیں چکرتی ٹھاکر کے پاس, وہاں پاٹھ کرتے ہیں, سمجھ آئے گا. اس میں کہتے نج برتیا پرہلاد سے باشتم دشتی تھی وچنم ستم ودھاتم ستم تن لوکے اپی ستتوین پرکٹی کرتم اتی ارتھ. کہتے اپنے داس ان پرہلاد مہاراج کی بات کو ستیہ کرنے کے لیے ان کے پتا جی نے پوچھا تھا کہ بھگوان کہاں ہے, بولے سروتر ہے. تو اپنے سروتر ویاپتی کو سدھ کرنے کے لیے یا اپنے بھکت کی بات کو سدھ کرنے کے لیے کہ بھگوان سروتر ہے. دیکھو اگر بھگوان بھکت کی باتوں کو نہیں رکھیں گے تو بھکت کی بات کا وشواس کون کرے گا بھائی, ہے کہ نہیں, اور کون بھکت بنے گا. صاف سمجھ میں آتا ہے یہاں جو پرچار پرسار ہوتا ہے وہ بھگوان خود نہیں کرتے, بھکت لوگ کرتے ہیں, اور اسی بھکتوں کی بات اگر جھوٹی ہو جائے تب تو کون بھگت بنے گا سنسار میں. اس لیے اپنے بھکت کی بات, اس لیے کہ کنتی پتر تم کہو, تم پرتیجا کرو, نہ آپ کیجیے نہ بولے, نہیں تم کرو. میرا بھکت کبھی جھوٹ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اسی ستیہ کے بل پر کل یوگ میں آج پرچار ہو رہا ہے. ایک ماتر ستیہ باقی کچھ بتا ہے, باقی تو تین پیر توڑ دیے ہیں کل یوگ نے, کل یوگ نے. لیکن اسی ستیہ کے پر شیل پربھوپاد مہاراج نے جو پرچار کیا ہے دیکھیے آج. اگر ایسے اپنے بھکت کی بات کو بھگوان نہیں رکھیں گے تو کل پرچار ٹھپ ہو جائے گا, اور جس ادیش سے بھگوان نے سنسار بنایا ہے وہ سارا ادیش نشفل جائے گا, پریوجن ہی نشفل جائے گا بھگوان کا. ایک کی ماتر پریوجن سے جگت بھگوان چلاتے ہیں, ان سمست جیووں کا ادھار, ان کا کلیان کرنے کے لیے بھگوان ان وشو کو چلاتے ہیں, اور ان کا کلیان ہوتا ہے, ان کا منگل ہوتا ہے بھکتوں سے. اتب بھکت کی بات بھگوان کے لیے اپنی بات سے بھی بہت زیادہ مہتو رکھتی ہے, اپنی بات پر مہتو نہیں دیتے بھگوان زیادہ. ہمیں تو کبھی یہ بولتا کبھی یہ بھی بول لیتا ہوں, لیکن میرا بھکت جو بولے گا بس. اسی ستیہ کے آدھار پر آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بھکتی کی بات کو ستیہ کر کے. پرتھوی تیاچے نگرادی گام سروتر پرچار ہوئے بھی مون نام. کبیراج گوسوامی نے جب کہا تھا وشو ہنس رہا تھا, اس سمے بھارت ہنس رہا تھا, और गौड़ी वैष्णव लोग हंस रहे थे, ऐसा कैसे कविदास बोल दिया, पृथ्वी तो बहुत लंबा चौड़ा है, सात समंदर पार है, बोलते ही सब जगह जाएगा नाम, लेकिन लोग हंस रहे थे। और उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर की बात पर लोग हंसना चले गए, अरे यहाँ नवदीप में सब एकत्रित होकर के अनेक अनेक लोग कीर्तन करेंगे, लोग हंस रहे थे, लेकिन सत्य हुआ ना, सत्यम विधातुम निज भक्त वृत्ति भाषितम। हा, अपने भक्त की बात को सत्य भगवान करते हैं, लेकिन भक्तों की बात के ऊपर विश्वास किसका है, एक भक्त का, जो श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, उनका कीर्तन में रत रहते हैं, उनकी श्रद्धा है कि ये कृष्ण कथा मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करके देगी। उनकी श्रद्धा भक्तों में होती है, इससे भगवान भक्तों का बात रखते हैं, अपनी बात तो कई बार तोड़ते रहते हैं। बोले अगर ब्राह्मण का कोई अपमान करता है, मेरी भुजा भी है तो मैं काट कर, अरे आपको हजार हजार भुजा है, दो चार काट लेने से क्या अंतर होगा आपको, भक्त, इससे दुर्वासा को कहा, भक्त के आगे मैं किसी को कुछ नहीं समझता, ब्राह्मण कौन है मैं नहीं जानता हूं। देखिए ये भक्त वत्सल, ये भक्त वत्सलता के कारण भगवान नरसिंह का प्रकट्य हुआ, निज वृत्ति भाषितम, सत्यम विधातुम, मेरे भक्त की बात को मैं सत्य करूंगा, प्रहलाद ने कहा सर्वत्र व्याप्ति है तो उसको मैं सिद्ध करूंगा। आत्मन व्याप्ति वो तो दूसरा बात है कि मेरी व्याप्ति सर्वत्र है, लेकिन मेरे भक्त ने कहा है इसलिए मैं करूंगा, क्यों, क्योंकि कल प्रचार कौन करेगा, ये लोग के अलावा कौन प्रचार करेगा मेरा, श्री भगवान का भी काम अटका हुआ है इस संसार में, और उनका काम उनकी सिद्धि करने वाले भक्त लोग होते हैं, क्यों नहीं रखेंगे उनके बात को। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, इसे कहते हैं कि विद्यार्थम सत्यम एव, ये सत्य बात है जो प्रहलाद बोलते हैं कि सर्वत्र भगवान है, तो कहते हैं तल लोके अपि सत्यत्वेन प्रकटीकर्तुम इति अर्थ, लोग जान जाए कि मेरे भक्ति की बात सत्य है, लोके अपि, लोगों को ज्ञान हो जाए, नहीं तो कौन भगवान का भजन करेगा। अगर शास्त्र में लिखी हुई बात सत्य नहीं है और भगवान भक्तों का रक्षण करते हैं, ये अगर बात नहीं सुनते कोई और शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं होता था तो कौन भजन करता था। शास्त्र ही एक तंतु है हमारे पास, बाकी तो अवा है, उनका नाम हमारे पास है लेकिन नाम में तो उतना विश्वास है नहीं हमारा, एक शास्त्र के शब्द के ऊपर विश्वास है भक्तों का, और वो शास्त्र भगवान के भक्त प्रस्तुत करते हैं, जानते हैं कि भक्त कभी झूठ नहीं बोलेंगे, एजेटिव शास्त्र देंगे, इसलिए उन तथाकथित भागवत वेत्ताओं के पास कितना भी विद्वान रहने दो, उनके पास नहीं जाकर के भक्तों की सभा में बैठना सीखना चाहिए व्यक्ति को। उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ पंडिताय मिलेगा, उन पंडिताय से क्या हो जाएगा, केवल भरण पोषण होगा कुटुंब का, और क्या होगा, कुछ नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे, उनका प्रेम नहीं मिलेगा, वंचित रह जाएंगे, इसलिए भक्तों की सभा में सुनिश्चित, सुनने का लोभ बहुत अच्छा है लेकिन उन लोभ के कारण हम लोग का उल्टा नाश हो जाता है, जब गलत सलत जगह बैठ गए तो हो गया कल्याण, है कि नहीं, इससे बहुत कुछ बचना चाहिए व्यक्ति को। देखिए यहां भागवतम के अनुसार एक सत्य बाप सत्य वस्तु, सत्य के कारण हम लोग इकट्ठा होकर के सत्य वस्तु के विषय में श्रवण करते हैं, और भगवान उनके सत्य को ठीक करेंगे। हम लोग में कोई लायकात नहीं है कि हम अपने बल पर अपने बुद्धि पर भगवान को प्राप्त करें, नहीं। लेकिन बुद्धा हमारे पास किसका है? हमारे साधुजनों का, हमारी परंपरा का बुद्धा है, जिसमें माध्वाचार्य जैसे साधु है, इसके बल बुद्धि पर हम लोग अड़ करके बैठे हुए हैं, है ना, सुनिश्चित होगा। अतः कहते लोके, कहते तन लोके अपि सत्यत्वेन, लोक में भी इसका प्रसिद्धि हो कि भगवान भक्त की बात को रखते हैं। हा, इन प्रसिद्धि के लिए कहते प्रकटीकर्तुम इति अर्थ, भगवान ने इसलिए प्रकटित किया, अपनी व्याप्ति भगवान किसको दिखाएंगे, देखने वाला कौन है, भगवान की सर्वत्र व्याप्ति कौन देखने वाला, किसके पास चक्षु देखेगा है? और तो भक्त लोग है जो दिखाते हैं, अरे सर्वत्र व्याप्ति है, देखो प्रहलाद महाराज दिखा दिया, बोले सर्वत्र भगवान की व्याप्ति है, बोल दिया पहले से पिता को, और भगवान ने सत्य करके दिखा दिया। विश्वनाथ ठाकुर का एक कहना, तथेवा अखिलेषु भूतेषु आत्मनो नरसिंहाद्य आकारस्य व्याप्तिम च सत्यम कर्तुम स्तंभे अदृश्य दृष्टो बभूव। कहते देखिए उनके साथ साथ कहते हैं तथेवा अखिलेषु भूतेषु, समस्त भूतों में भगवान स्वयं व्याप्त है, इस बात को कि किस रूप में, नरसिंहाद्य रूपम, रामादि कृष्ण रूप में नहीं, समझना चाहिए बराबर, तत्व को समझिए ठीक से। इसलिए हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, नमस्ते नरसिंह, सर्वत्र उनकी व्याप्ति, श्री नरसिंह आदि रूप से सर्वत्र भगवान व्याप्त है। बहुत सुंदर है, व्याप्तिम तो सत्यम कर्तुम खंभे, तो इसी को सत्य करने के लिए खंभे में श्री भगवान खंभे से वो कहते हैं उन अदृश्यता दृष्टो बभूव, प्रकटित होकर के दिखा दिया खंभे से, अदृश्य का अर्थ दृष्टो, सबके सामने सभा में दिखा दिया नरसिंहदेव। और कहते हैं ठाकुर कहते हैं न कीदृश, अच्छा किस प्रकार वो किस रूप में प्रकटित हुए, जगत ने कैसा देखा, भगवान जब दृश्यमान हुए सबके सामने तो कैसा देखा भगवान को, न मृगम न मृग संबंधिनी न अपि मनुष्यम रूपम सभायाम उद्वहन अत्तापि हेतु सत्यम इति। देखिए वो कहते हैं कि न तो वो मृग संबंधी सारे अंग उपांग उनके थे, केवल ऊपर का हिस्सा सिंह का, ऊपर के हिस्से से जो भी आचरण करेंगे वो सिंह जैसा करेंगे, इसे प्रहलाद महाराज को चाटने लगे बाद में, सिंह अपने शावक को जैसे चाटता है उसी प्रकार भगवान भक्त वत्सल है तो अपने जीभ से चाटने लगे। और जगत को निर्भय करने वाले अपने हस्तकमल को उनके सर पर, दोनों आचरण है, सिंह के द्वारा चाट रहे हैं और हस्तकमल को अपने भक्त के सिर पर रखते हैं। इसी से हम सबको सीखना चाहिए कि जो भी भक्त हो, भले ही विधि भक्ति है, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है प्रहलाद की तरह, अभी चित्त निर्मल नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन नरसिंह के हाथ को देख लेना चाहिए, भक्तों के सर पर रहता है। अब कितना अनुभव, कितना दृष्टांत उसके विषय में माइंड में आ रहा है, लेकिन उनको नहीं देख करके आगे चलते हैं क्योंकि बहुत 5-7 मिनट रह गया है अभी। भक्तों का अपना अनुभव है कि नरसिंह साथ में चलते हैं, या दूसरे भक्तों की उनके अनुभव से ये पता चलता है। न केवल प्रहलाद महाराज, ये हस्त कमल सबको अभिदान, जो उनका भक्त है सबको अभिदान करने वाला है। कोई भक्त सोचता है कि नसीब से बच गए, नसीब नहीं, भक्ति के कारण श्री नरसिंह देव सर्वत्र व्याप्त है, उनका हस्त कमल सर्वत्र है। इसलिए महाप्रभु ने इन हरे कृष्ण मूवमेंट के लिए, खास करके इस गौड़ी संप्रदाय के लिए, उन नरसिंह को गणपति के रूप में रखा है। सब पहले जैसे गणपति को याद करके कार्य करते हैं ना, नरसिंह देव को याद करके अपना भक्ति चालू करें। कोई भी रुकावट होगी भक्ति में, बाधा आएगी, वो बाधा तुरंत खत्म करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बाधक कौन है? हमारा चित्त। रोज प्रार्थना करनी चाहिए, ये चित्त मानता नहीं है, कृपा कीजिए। आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये ठीक होने वाला नहीं है। इसे डेली प्रार्थना के रूप में प्रभुपाद जी ने रखा है, जर किस मोमेंट। और तीनों संध्या में प्रार्थना चलती है नरसिंह, क्यों? क्योंकि उनका हस्त कमल सर्वत्र है। अपने भक्तों को या साधक भक्तों को भी उन भक्ति से बचाते रहते हैं। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती फंसना चाहते हैं तो कुछ फंसा करके भी दिखाते, लेकिन वापस वो कुछ जिसने फंसाया है उसको अलग करके फिर दिखा देते, बेटा लाइन पे आओ, लाइन पे आओ, भक्ति ट्रैक पकड़ो, अलग ट्रैक में मत जाओ, माया ट्रैक पर चले जा रहे हो। श्री नरसिंह है, सर्वत्र उनका हाथ है, ये विश्वास होना चाहिए। जो भक्त करते हैं, भक्ति करते हैं भक्त, उनको ये विश्वास तो होना ही चाहिए कि सर्वत्र भगवान रक्षा करने के लिए। हाँ, सर्वत्र व्याप्ति का अर्थ ये नहीं है कि उनको कहीं भी प्राप्त किया जा सके, या किसी एक स्थान में उनका निवास है इसे वहीं पर उनको प्राप्ति, उनकी प्राप्ति वहीं पर होगी, ये भी सिद्धांत नहीं है। बृहद भागवत मत में सनातन गोस्वामी पाद बहुत सुंदर सिद्धांत के रूप में कुछ शिक्षा दी है। यद्यपि मैं बहुत इसमें जाना चाहता था लेकिन जा नहीं सकता, लेकिन मोटे रूप में आप समझिए इस बात को। सनातन गोस्वामी पाद एक सिद्धांत देते हैं। श्री प्रहलाद महाराज को जब कहा नारद जी ने, अरे बेटा सदैव तुम्हारे घर में तो भगवान विराजमान है, कौन देखा? बोले रावण ने देखा। तुम तुम्हारे पौत्र के साथ जब तुम सुतल में निवास कर रहे हो, भगवान उनके द्वारपाल के रूप में, बोले किसने देखा? बोले रावण ने, प्रसंगोपात देखा। बाकी अगर हमारे भगवान है तो मैं दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र क्यों जाऊंगा, विष्णु दर्शन के लिए? बहुत सुंदर तर्क रखा है। भगवान सर्वत्र होते हुए भी सब कोई उनको प्राप्त नहीं कर सकते, और भगवान अपने निवास स्थान मंदिर में होते हुए भी वो दूसरी जगह में भी प्राप्त कर कोई कर सकता है उनको। उसके लिए चाहिए उत्कंठित साधन, उत्कंठा युक्त भजन एकमात्र उनकी प्राप्ति का उपाय है। सर्वत्र होते हुए भी रक्षा करेंगे, सब कुछ होगा, भक्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक भगवान इंद्र सिंह के रूप में जीवों का रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि उनके भक्त का भाषण है, उनको सत्य नहीं करेंगे। सर्वत्र व्याप्ति और कौनते प्रति जाने स्वमुख की उक्ति, उनको सत्य करेंगे, बट विश्वास होना चाहिए। तो मैं कह रहा था एकमात्र कारण क्या है भगवत प्राप्ति का, बोले अत्यंत व्याकुलता युक्त हृदय। भगवान के लिए जितना व्याकुल हृदय हो जाएगा वही एकमात्र उपाय है। सर्वत्र प्राप्ति होते हुए भी जब तक चित्त में उनके लिए व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है, या व्याकुल चित्त से आर्तनाद से जब पुकार नहीं होती हृदय पूर्वक, तब तक सर्वत्र व्याप्ति होते हुए भी भगवान कहीं से प्रकट नहीं होते। अच्छा तो प्रहलाद के लिए कैसे प्रकट हो गए, उसका कारण है तभी धातु उनका विधान करने के लिए। मेरा भक्त बोल रहे ठीक है, सर्वत्र मेरी व्याप्ति है। देखिए खैरिया बहुत बहुत का बातें लिखी हैं, उनमें मैं जाना चाहिए। तो कहते हैं कहते भूते व्यस्त विशिष्ट व्यो मृत्युर मा मा मृत्युर मा अभूत ममा, और उनके एक भृत्य उनके द्वारा ये उक्ति का प्रयोग हुआ था। जब ब्रह्मा जी के पास वचन मांग रहे थे हिरण्यकश्यपु, ये भी एक भक्त है, और उनको वचन देने वाला ये भी एक भक्त है। ये सब भक्त को ही कथा है, भागवतम में और कोई नहीं है, सब भक्त लोग हैं। तो उन्होंने कहा था देखो आपकी सृष्टि में कोई भी आपके द्वारा सृष्ट प्राणी मुझे मार न सके, उनकी बात को सत्य करने के लिए भगवान ने इस प्रकार अपना हुलिया बनाया। अच्छा तथा न अंतर बहिरीति न नरे न मुगे रीति, और उन्होंने कहा था अगर मैं बाहर न मरूं, घर में न मरूं, मृग से न मरूं, नर से न मरूं, यह न मरूं, वह न मरूं, न मरूं, न मरूं तो न निकल गया मरूं। अरे भगवान मारने वाले होते हैं, जैसे आज विजयादशमी है कि नहीं, भगवान रामचंद्र ने आज विजय प्राप्त किया रावण के ऊपर। रावण ने अपना 10 बार अपने मस्तिष्क का छेदन करके आहुति दिया था यज्ञ में शिव जी के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। थोड़ा बात तो होना चाहिए, कहा था मुझे अभी समय हो रहा है। तो देखिए तो भगवान रामचंद्र जी के साथ जब रावण का युद्ध चल रहा था, तो ये युद्ध में बार बार मस्तिष्क काट करके भी रावण को एक नया मस्तिष्क आ जाता था, क्योंकि शिव जी उनकी सहायता कर रहे थे, शिव जी सहायक थे ना, इसीलिए ये सब हो रहा था। उनको कुछ अरेंज किया हुआ था शिव जी ने, कुछ भी अंदर कुछ सिस्टम इस प्रकार लगाया था, एक अमी कूप रखा था, वो अमृत जाकर के मस्तिष्क नया नया उत्पन्न कर रहे थे। रामचंद्र जी बार बार छेदन करते थे और मस्तिष्क आ जाता था। तब विभीषण का परामर्श, विभीषण से परामर्श किया, ऐसा क्यों है, बोला ऐसा सिस्टम है, आप उनको छाती में मार मारिए, सबसे पहले कूप तोड़िए, उनके बाद में उनका मस्तक लास्ट होगा, बस खत्म हो जाएगा। और जैसे वो मस्तक कट रहा था, रावण भय में आकर के शिव जी को पुकार रहा था, और शिव जी युद्ध देख रहे थे पार्वती जी के साथ, रामायण में ऐसा लिखा है। आकाश में वो युद्ध घमासान जो चल रहा था उनके भक्त के साथ रामचंद्र जी का, वो आकाश में वो पार्वती जी भी बैठी हुई थी, नंदी के ऊपर सवार होकर के वो पति पत्नी देख रहे थे युद्ध को, और रावण जैसे मस्तक उठता था बार बार शिव जी के सामने वो देख रहे थे, शिव जी दूसरी साइड देख रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा आपको पुकार रहा है, बोले चुप, असली मारने वाला है, जब तक नकली आया तब तक बचाया, मैंने असली आ गया है, अभी तुम भी शांत रखो, मरने दो उनको। अरे भगवान रामचंद्र जी ने उनका वध कर दिया। तो विजयादशमी है आज, तो ठीक 9 बज रहे हैं, तो यहां पर हम विराम देते हैं, क्योंकि मेरा आदत नहीं है मैं कभी भी 2 मिनट भी लेट नहीं करता हूं, आप जानते हैं। हरे कृष्ण।